कहानी यीशु की।
कहानी यीशु की।
नमस्कार श्रोताओं, कहानी यीशु की कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं नाटिकाओं की नई श्रृंखला रोम में एक बंदी, जो हमें रोम नगर में प्रेरित पौलुस की जेल यात्रा के विषय में बताती है। जेलों के लिए पौलुस कोई अजनबी व्यक्ति नहीं रहा था। रोमी साम्राज्य के विभिन्न नगरों की जेलों में वो रह चुका था और उसने यीशु में अपने विश्वास के कारण बहुत अधिक सताव का सामना भी किया था। उसने लिखा था, मैं बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेते खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिस पर मैं चढ़ा था टूट गए, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटे। इससे पहले उसने रोम की कलीसिया को एक पत्र लिखा था और उन्हें बताया था कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा, क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार। जैसा कि लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है, अलग कर सकेगी। पौलुस जानता था कि रोम ने कोई ऐसी शक्तिशाली जेल नहीं बनाई जो उसे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सके। रोम में अपने कैद की अवधि में पौलुस बहुत ही अधिक व्यस्त रहता था। उसने वहाँ से फिलिप्पी, इफिसुस और कुलुसे की कलीसियाओं के विश्वासियों को पत्र लिखे और जो लोग उससे भेंट करने के लिए जेल में आते थे उनसे वो मिला करता था। जिन लोगों ने उसे कैद में रखा था उन्हें भी वो यीशु के बारे में बताया करता था। फिलिप्पी की कलीसिया को लिखे पत्र के अंत में उसने उन्हें व्यक्तिगत रूप से उनका अभिवादन करते हुए लिखा था, सब पवित्र लोग विशेष करके जो कैसर के घराने के हैं तुमको नमस्कार कहते हैं। विशेष करके जो कैसर के घराने के हैं। वाह, इस अभिवादन के पीछे की कहानी को जानना क्या अद्भुत नहीं होगा। ये श्रृंखला इस बात की पड़ताल करती है कि वहाँ क्या घटित हुआ होगा। आइए अब सुनते हैं नाटिका मन की जेल।
सिसरो, अगर कोई उनके बारे में कुछ पूछे तो मुझे क्या कहना चाहिए?
ड्रेगो, उन्हें सत्य बता दो।
ओह हाँ, मुझे क्षमा करो, किंतु शावनी के कमांडर परेशान नहीं हो सकते। वो काल कोठरी में नीचे हैं, एक कैदी से परामर्श ले रहे हैं।
जब तुम ऐसा कहते हो ये विवेकपूर्ण नहीं लगता।
मुझे इसे और किस प्रकार करना चाहिए सिसरो?
कोई आ रहा है।
कमांडर, वो कहाँ है?
वो नीचे उस यहूदी से बातचीत कर रहे हैं।
ये बहुत उत्तम लग रहा है।
सिसरो, क्या तुम ऐसा सोचते हो?
निश्चित रूप से, मैं बहुत ही प्रभावित हूँ।
ये बहुत अच्छा लग रहा है कि नहीं? जैसा कि मैंने कहा था, एक दिन मैं सैन्य टुकड़ियों के सामने कूच कर रहा हूँगा।
उसके लिए तुम्हें सैन्य टुकड़ी में होना होगा।
ये मेरी गलती नहीं है कि वो नए लोगों की खोज नहीं कर रहे हैं।
वे सदैव नए लोगों की खोज में रहते।
अच्छे लोगों से मेरा मतलब है?
धैर्य रखो।
हाँ माँ,
मैंने बहुत अधिक नहीं सीखा है, किंतु धैर्य बहुत दूर के देश जैसा नहीं लगता।
सिसरो, उस यहूदी से अवश्य तुम्हारी बातचीत हुई होगी।
और तुम फिर से द्वार के पीछे छिपकर अवश्य ही सुन रहे होगे। एक कैदी से बातचीत करना अपराध नहीं है, तुम ऐसा बहुत बार करते हो।
हाँ सिसरो, अपनी थाली द्वार के पास रख दो।
किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से एक बार बात करने से तुम्हें दुख नहीं होगा, भले ही वो यहूदी हो।
लोग मेरे बारे में क्या बातचीत करते हैं? मेरी प्रतिष्ठा रक्षा करने के लिए है, ठीक है ना? मेरे साथ भी कभी ऐसा हो सकता है।
तुम्हें स्वयं को आगे बढ़ाने के लिए कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं चूहे पकड़ने के बारे में बात नहीं कर रहा।
और तुमने तो जैसे सैनिकों में उच्च पद प्राप्त कर लिया हो सिसरो, क्या तुम कमांडर हो?
मैं तुम्हें आश्चर्यचकित कर सकता हूँ।
हाँ, तुम एक बार में अपने कपड़ों को फर्श पर से उठा सकते हो।
जेलर।
सभासद ग्रेटस, आपके अंदर आने की आवाज मैंने नहीं सुनी। महोदय।
हाँ, मैं देख रहा हूं कि एक द्वार जो तरही की आवाज से भी ऊंची आवाज में खुलता है, तुम्हारी दृष्टि से कैसे बच सकता है? मैं अपने बेटे के लिए कुछ छोड़ना चाहता हूँ।
वो सूबेदार के साथ बाहर गए हैं, क्या आप चाहते हैं कि मैं उन्हें ले आऊं?
मैं उससे बाद में बात करूंगा। वो और मैं बहुत शीघ्र एक दूसरे का सामना करेंगे।
मुझे क्षमा करें, ये पूर्वाभास लगता है।
ऐसा लगता है। ये वही खिड़की है जहां पर उसके रोम में वापस आने पर उसने और मैंने पहली बार बातचीत की थी। ये अजीब है कि हम अंधेरे समय में वस्तुओं को और अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। सारा बकवास दूर धकेल दिया जाता है। ये आंखें प्रकृति के सभी रंग, बादलों और सबसे नंगे प्राणी को पकड़ लेती हैं। हम छोटे पंछियों को देखते हैं और उनके गीत कानों को कितने मीठे लगते हैं। मुझे क्षमा कर दो, एक सभासद के लिए तुम्हें अपनी भावनाओं से पस्त कर देना सम्मानजनक नहीं है।
ऐसा लगता है कि कुछ बुरा घटित होने की आप अपेक्षा कर रहे हैं।
नहीं, उनका ये अर्थ नहीं है। वो पक्षियों और रंगों की बात कर रहे हैं। क्या तुम ध्यान नहीं दे रहे हो सिसरो?
मुझे क्षमा करें सभासद, आप क्या कह रहे थे?
ओह, मैं केवल धिक्कार रहा था। एक पिता बस थोड़ा ही कर सकता है जब उसका बेटा पूरी तरह एक युवा आदमी बन जाता है और अपना मार्ग स्वयं बना लेता है। चीजों को ठीक करने का कोई तरीका नहीं बचता जब कोई उन्हें इतनी बुरी तरह से हानि पहुंचाता है। अब समय समाप्त हो गया है और इसके साथ बस सभी मात्र व्यर्थताएं हैं जिनके बारे में आपने सोचा था। केवल तभी आप एक गलत जीवन का खोखलापन देखते हैं। मेरा एक दूसरा बेटा भी था, क्विंटस से एक वर्ष बड़ा था। एक युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई। मुझे लगता है उसके बाद मैंने क्विंटस पर ध्यान नहीं दिया, अपने दुख में डूब जाने के लिए उसे एक ओर धकेल दिया। क्या तुम सोचते हो कि दूसरे जन्म में जब लेखा जोखा लिया जाएगा तो ये बहाना कारगर सिद्ध हो सकेगा?
मैं नहीं जानता।
जब कभी तुम्हारे बच्चे हो तो ये निश्चित कर लेना कि उन्हें अपने निकट रखो और उन्हें उनसे अपने प्रेम और गर्व के बारे में बताना, क्योंकि वे पल भर में उड़ जाएंगे और तब तुम्हारा दिल टूट जाएगा। अच्छा, इस बूढ़े आदमी का भाषण बहुत हो गया। लोगों, तुम्हारा दिन शुभ हो।
सभासद, आपका दिन भी अच्छा हो।
मुझे परवाह नहीं कि मार्सेलस मेरे बारे में क्या बातचीत करता है, और मुझे इसकी भी परवाह नहीं कि सार्वजनिक चौराहे पर उसे कौन सुनता है।
आपको तब परवाह होगी जब सम्राट ये छावनी उसके अधीन कर देगा। क्विंटस, मुझे सुनिए।
नहीं, तुम मुझे सुनो। मैं मार्सेलस या किसी और से नहीं डरूंगा। अगर सम्राट को मेरी योग्यता पर संदेह हो तो उसे मेरे लिए भेजने दो।
ये आपकी योग्यता का प्रश्न नहीं है।
कहो ड्रसूस।
ये आपकी निष्ठा है। वे यहूदी कट्टरपंथी हैं और वे राजद्रोह का प्रचार करते हैं। क्विंटस, आप समझ रहे हैं कि किस विषय में बात कर रहा हूँ। वे एक परमेश्वर का, न कि कैसर का प्रचार करते हैं, किंतु एक अनदेखे परमेश्वर का और उसके पुत्र का जो मर गया और फिर जी उठा। क्विंटस, तर्कशील बनिए, अपना दिमाग साफ करें और चीजों को क्रम में स्वीकार करें। अपने सम्राट की थोड़ी सी पूजा करने से आपको कैसे चोट पहुंच सकती है, जो आपको पद प्रदान करता है, सभा जो आपको वेतन देता है।
क्या ये अजीब नहीं लगता कि एक आदमी में देवता को देखना कितना आसान है, जो झूठ बोलता है और अपने लाभ के लिए शासन करता है।
सतर्कता से क्विंटस, हम सब युद्ध से निराश होकर लौटे हैं, किंतु इस तरह की बातें खतरनाक हैं।
मैं किस प्रकार ये विश्वास कर सकता हूँ कि भ्रष्ट लोगों की एक सरकार कभी इस संसार की उद्धारक भी हो सकती है। हम में से कितने ये रोम के सच्चे कैदी हैं ड्रसूस?
आप क्या कह रहे हैं?
क्या हम वे नहीं जो सलाखों के पीछे से घूरते हैं, हमारे अंधे दिमाग की सलाखों से?
ये पागलपन है, मैं ये नहीं सुन सकता।
वह बूढ़ा यहूदी उस काल कोठरी में मेरे जानने वाले किसी भी परिचित आदमी से अधिक आजादी के साथ बैठा है, और हम फिर भी कहते हैं कि वह एक मिथक में विश्वास करता है। हमारे विपरीत जो मृत पूर्वज से प्रार्थना करते हैं, नैतिक रूप से भ्रष्ट मनुष्यों में से जो कब्र में सड़े रहते हैं, और हम लकड़ी और पत्थर से बनी मूर्तियों से प्रार्थना करते हैं। हम पेड़ों से प्रार्थना करने वाले ड्रूड से अधिक हास्यास्पद नहीं है।
आपको जो विश्वास करना है करें क्विंटस, मुझे उसकी परवाह नहीं है, लेकिन आप उन अफवाहों को रोकने के लिए कुछ अवश्य करें। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सम्राट के सामने आपको मार्सेलस का सामना करना पड़ सकता है।
और क्या करूं? क्या झूठ की उस अंकल से जकड़ा रहूं जिससे दूसरे लोग चिपके रहते हैं? दूसरे क्या कहते हैं और क्या करते हैं उसी भय में मैं जीता रहूं? ड्रसूस, हम जिस जेल में खड़े हैं उसे कहीं अधिक बुरा एक जेल है, ये यहाँ है हमारे हृदय में। जब हमारा अपना घमंड सभी कारणों को हिलाकर रख देता है और मांग करता है कि वे स्वयं से ऊंचा कुछ भी नहीं है। रसूस, मुझ में सत्य होना ही चाहिए, चाहे इसका कुछ भी मूल्य क्यों ना हो।
ऐसा ही होगा, मुझे क्षमा करें क्विंटस, मेरे पास आदेश है।
रसूस, आज से पहले कभी भी तुमने मेरे विरुद्ध अपनी तलवार नहीं खींची थी, किस प्रकार मैं तुम्हारा शत्रु बन गया?
मार्सेलस ने सदन का पक्ष प्राप्त कर लिया है। आपसे बातचीत करने के लिए मुझे अंतिम अवसर दिया गया था। अगर आप तर्क नहीं मानते हैं तो आपको गिरफ्तार करके मुझे अपनी विश्वास योग्यता सिद्ध करनी थी। जेलर।
महोदय।
कमांडर को नीचे ले जाओ। ये करो। जेलर, उनको उस यहूदी के साथ रखो।
धन्यवाद ड्रसूस, मुझे सदैव तुम्हारी मित्रता स्मरण रहेगी।
श्रोताओं, कार्यक्रम कहानी यीशु की सुनने के लिए आपका धन्यवाद। नाटिका के साथ हम फिर कुछ देर में हाजिर होंगे। आज हम सुन रहे हैं एक नाटिका जिसका विषय है मन की जेल। पौलुस रोम की जेल में बंद है। उसने वहाँ की छावनी के कमांडर क्विंटस के हृदय को यीशु पर विश्वास करने के लिए जीत लिया है। अब क्विंटस को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे पौलुस के साथ जेल में रखा गया है। आइए सुनते हैं आगे की कहानी।
ड्रेगो, ये महिला कमांडर से मिलने आई है।
उन्होंने किसी को मुलाकात करने की आज्ञा नहीं दी है।
उसे भेंट करने की आज्ञा है, कमांडर ने ही ये आज्ञा दी थी।
ठीक है, किंतु कमांडर अब अधिकार में नहीं है। इसके अतिरिक्त इस महिला को यहूदी से मिलने की आज्ञा थी, कमांडर से मिलने की नहीं।
इस बिंदु पर ये क्या चोट पहुंचा सकती है?
ये सब ठीक है, मैं केवल उन्हें एक उपहार देना चाहती थी, शायद आप ही उन्हें दे दें।
मैं कोई संदेशवाहक नहीं हूँ।
तुम जेलर से भी कमतर हो। ड्रेगो, ये इसके लिए करो।
ये क्या चीज है?
ये एक चांदी के चेन से जुड़ा हुआ गहना है।
मुझे इसे देखने दो। एक सलीब, कमांडर इस छोटे से क्रूस को क्यों पहनना चाहेंगे? क्रूस अपराधियों के लिए होती थी।
उन्होंने ये मेरे गले में पहने देखा था और इसके बारे में पूछा था। मैंने उन्हें बताया था कि ये मेरे उद्धारकर्ता के स्मरण में है।
मेरी समझ में नहीं आया कि कमांडर ये क्यों चाहते हैं।
तुम तो ये भी नहीं जानते कि मक्खियां झुंड में क्यों आती हैं। ड्रेगो, इसके लिए ये करो।
ठीक है, मुझे दे दो ये और मैं उन्हें दे दूंगा।
धन्यवाद। क्या आप जानते हैं ड्रेगो महोदय, आप बहुत अधिक दयालु हैं।
मैं दयालु?
आपको किसी डॉक्टर से दिखाना चाहिए महोदया। अगर आप ड्रेगो में एक दयालु आदमी देख रही हैं, तो आपकी आंखें आपको धोखा दे रही हैं।
उसे अकेला रहने दो सिसरो, वो स्वाद और व्याकुलता दिखाती है।
तुम्हारा मतलब है सूझबूझ?
हाँ, मैंने यही कहा था, तुमने सुना नहीं?
मुझे नहीं लगता कि आपने कभी पॉलुस से कुछ बातचीत की हो।
मुझे और बहुत सारे आवश्यक कार्य करने होते हैं।
जैसे बेहोश हो जाने के बाद शराब पीना।
इससे मेरी जिम्मेदारियों के बोझ सरल बन जाते हैं।
बिल्कुल, हर कोई जेलर नहीं हो सकता।
अब मुझे जाना होगा। एक बार फिर आपका धन्यवाद। शायद फिर कभी मैं आपके लिए गर्मा गर्म भोजन लेकर आऊंगी।
ओह, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। अच्छा ठीक है, मुझे हरे प्याज और लहसुन और छोटे छोटे बीजों जैसे वस्तुओं के साथ मटन स्टू बहुत पसंद है।
तिल?
हाँ हाँ हाँ, वही।
बिल्कुल, आपका दिन अच्छा रहे।
ड्रेगो, अब तुम क्या कर रहे हो?
मैं जो कर रहा हूँ वो तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है?
तुम अपनी जेल की पुस्तिका में कमांडर का नाम लिख रहे हो।
ये तुमसे बहुत संबंध रखता है।
तुम्हारा कहने का मतलब था सहानुभूति।
वही मैंने कहा था, अपने कान के अंदर से गंदगी साफ कर लो सिसरो। क्विंटस, लूसियस, ग्रेटस और रोमी।
ये गलत लग रहा है।
तुम इनका नाम किस प्रकार से लेते हो?
मेरे कहने का मतलब था कि तुम्हारी पुस्तिका में उनका नाम लिखा जाना गलत लग रहा है मुझे।
क्या उनके स्थान पर तुम्हारा नाम होना चाहिए था?
नहीं 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 नहीं, मेरा नाम नहीं होगा।
जेलर।
जी महोदय।
उनके साथ क्या घटना घटेगी महोदय?
अपनी जीभ बंद रखो।
जी महोदय।
मेरे लिए थोड़ी शराब उंडेलो।
महोदय, एक बार के लिए ये शराब अच्छी है, तांत्रिका को व्यवस्थित रखने के लिए अच्छा है।
किसने कहा कि मेरी तंत्रिकाएं अव्यवस्थित हैं?
मेरी गलती महोदय।
तुम्हें देखकर अच्छा लगा ड्रेसूस।
मुझे आपको सदन में ले जाना है। मार्सेलस और अन्य लोगों ने आपके विरुद्ध आरोप लगाए हैं।
और मेरे पिता का क्या विचार है?
आपके मुकदमे से अनुपस्थित रहने का उन्होंने अनुरोध किया है।
तुम वहाँ रहोगे, मुझे ऐसा लगता है।
अगर उन्होंने इसकी आज्ञा दी तो बिल्कुल।
और तुम सिसरो, तुम वहाँ होगे? तुम होगे या नहीं?
क्या
तुम मेरे मुकदमे में वहाँ होगे?
मैं वहाँ क्या रहूँगा?
क्योंकि मेरे विरुद्ध तुम एक साक्षी हो।
मैं नहीं जानता कि आप क्या बात कर रहे हैं महोदय।
मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ। तुम मार्सेलस को रिपोर्ट कर रहे थे और वह सदन को रिपोर्ट दे रहा था।
कमांडर, आपको कुछ गलतफहमी हुई है।
मुझसे? केवल वो तुम थे जिसे पॉलुस से मेरी व्यक्तिगत बातचीत का ज्ञान था। तुम प्रत्येक शब्द जानते थे क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ उसे साझा किया था। मैंने अपने गहरे विचार तुम्हारे साथ साझा किया था क्योंकि मैंने तुम में एक कोमल हृदय और खुला मन देखा था। मैंने अपने जीवन के साथ तुम पर भरोसा किया था और तुमने मुझे धोखा दिया।
ठीक है, आप गलत थे। आप एक गद्दार हैं। मैं रोम से निष्ठा रखता हूं, मैं निष्ठावान हूं। उस यहूदी ने उसने मेरे मन में विष भरने का प्रयास किया था। मैं उसे नहीं सुनूंगा, मैं आपको भी नहीं सुनूंगा, अब आगे बिल्कुल भी नहीं।
सिसरो, अपने कानों से हाथ हटाओ और मुझे सुनो।
नहीं, मैं नहीं सुनूंगा, फिर भी नहीं।
सिसरो, मुझे सुनो, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई कड़वाहट नहीं है। केवल यह जान लो, इतना सत्य सुनकर छुटकारे के इतने निकट होने के कारण तुम्हारी निंदा बहुत ही बुरी तरह की होगी।
मैं आपको सुनना नहीं चाहता, मैं आपको सुनना ही नहीं चाहता, मैं आपको नहीं सुन सकता, मुझे दूर जाना है, दूर जाना है मुझे।
क्विंटस, मुझे क्षमा कर दें।
मैं तुम पर दोष नहीं लगाता ड्रेसुस, ये रोम है जो अब तुम्हारे द्वारा बोल रहा है, किंतु मैं अब और अधिक रोम का कैदी नहीं हूँ। परमेश्वर का पुत्र मेरे हृदय में वास करता है, मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति हूँ। ड्रेगो, मैं चाहता हूँ कि ये तुम्हारे पास रहे।
आपकी ये छोटी सी सलीब, मैं नहीं जानता मैं क्या कहूँ। मैं तो ये भी नहीं जानता कि इसका क्या महत्व है।
मुझे लगता है कि समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा।
महोदय, आपने मुझे मेरे नाम से बुलाया?
यह समय के बारे में है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? आओ ड्रेसुस, इतना नीचे मत देखो, पुराने मित्र।
मैं कैसे नहीं कर सकता?
हमारे समय को एक साथ रहने वाले छोटे लड़कों के रूप में सोचो। मेरी मूर्खता को स्मरण करके तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आनी चाहिए।
स्मरण करके तुम मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट के स्थान पर आंसू ला दोगे?
आओ मुझे गले लगा लो प्रिय मित्र, जब वे मुझे दंड दें तो मैं आशा करता हूँ कि तुम यहाँ मुझसे भेंट करने आओगे, हम बातचीत करेंगे
गुजरे हुए दिनों के अच्छे समय के बारे में,
और शायद भविष्य के अच्छे समय के बारे में भी। शायद मैं अपना उधार चुका सकूं और उस बार तुम्हारे जीवन को बचा सकूं। विदाई।
श्रोताओ, यीशु ने कहा है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इस संसार में कोई भी ऐसी जेल नहीं बनी जो उस व्यक्ति से जो यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में जानता है उससे उसकी सच्ची स्वतंत्रता छीन सके। यीशु के पास वो अधिकार है कि वो किसी भी व्यक्ति को छुटकारा दे सकता है और उसके जीवन को परिवर्तित कर सकता है। अभी वो समय है कि हम परमेश्वर को अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। जब हम यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं और उसके पीछे चलने के लिए समर्पण करते हैं, तो हम अपने पापों की क्षमा और अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। उसका आत्मा हम में वास करने और हमारी सहायता करने के लिए आता है। परमेश्वर का वचन कहता है, आत्मा हमारी निर्बलता में हमारी सहायता करता है। परमेश्वर चाहता है कि आप मसीह में एक विश्वासी के रूप में बढ़ें और अपने विश्वास में दृढ़ हों। प्रत्येक दिन परमेश्वर का वचन पढ़ने के द्वारा हम उसमें बढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि प्रत्येक दिन का जीवन हमें कैसे व्यतीत करना है। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के द्वारा भी हम विश्वास में बढ़ते हैं। हमें परमेश्वर की भलाई और दया के लिए उसका धन्यवाद करना चाहिए और हमें उसके द्वारा दिए जाने वाली आशीष के लिए भी उसका धन्यवाद करना चाहिए। हमें हमारे पापों की क्षमा के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। प्रत्येक दिन के जीवन में अगुवाई करने के लिए भी परमेश्वर से बातचीत करनी चाहिए। प्रत्येक दिन का आरंभ करने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि परमेश्वर के वचन से कोई भाग हम पढ़ें और उसके बाद प्रार्थना करें। मसीह के पीछे चलना सदैव सरल नहीं होता। मसीह का विश्वासी होने के कारण कई बार एक विश्वासी को सताव का सामना भी करना पड़ता है। अभी क्विंटस के बारे में जो हमने नाटिका सुनी है, ये उसका उदाहरण है। अगर हमें कोई सताए और हमारे लिए कठिनाई उत्पन्न कर दे क्योंकि हम यीशु के विश्वासी हैं, तो हमें आश्चर्य में नहीं पड़ना चाहिए। यीशु ने कहा है, यदि उन्होंने मुझे सताया तो वो तुम्हें भी सताएंगे, परंतु ये सब कुछ वो मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। यीशु ने ये भी कहा, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बातें करें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने भविष्यताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। एक विश्वासी के रूप में प्रेम और क्षमा हमारा चरित्र होना चाहिए। सताव की स्थिति में भी यीशु ने कहा, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और जो तुम्हें सताएं उनके लिए प्रार्थना करो। जब क्रूस पर यीशु की मृत्यु हो रही थी तो उसने उन लोगों के लिए प्रार्थना की जिन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया था। उसने प्रार्थना की, हे पिता उन्हें क्षमा कर क्योंकि वे नहीं जानते कि क्या करते हैं। सताव का सामना हम अकेले नहीं करते। हम जिन परीक्षाओं का सामना करते हैं परमेश्वर उसके बारे में जानता है और वो हमारे साथ होता है। परमेश्वर ने कहा है, ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा। हमारे जीवन में उसकी उपस्थिति के कारण पवित्र शास्त्र के शब्दों में हम कह सकते हैं, प्रभु हमारा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। अपने दिल की गहराई से मैं प्रार्थना करने जा रही हूँ, आप भी मेरे साथ इस प्रार्थना को दोहराएं। प्रिय प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आने के लिए आपका धन्यवाद। एक विश्वासी के रूप में बढ़ने में कृपया मेरी सहायता कीजिए। मेरी सहायता कीजिए कि जब मेरे जीवन में सताव आए तो मैं दृढ़ बन सकूं। आपका धन्यवाद कि आप मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। प्रभु यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगती हूँ, आमीन। प्रिय श्रोताओं, हमें अपना सुझाव देने और परामर्श प्राप्त करने के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 8448877757। जी हाँ, नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 8448877757। हमारा पता है फीबा इंडिया, कार्यक्रम कहानी यीशु की, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। पता एक बार फिर से सुन लें, फीबा इंडिया, कार्यक्रम कहानी यीशु की, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। और अब अगले सप्ताह तक हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
दिल्ली से रमन जी प्रश्न करते हैं कि मुझे किस प्रकार के सताव का सामना करना पड़ सकता है।
रमन जी, विश्वासियों को आज कई प्रकार का सताव का सामना करना पड़ता है। उनका उपहास और मजाक उड़ाया जाता है। आप अपनी नौकरी खो सकते हैं। आपका परिवार आपका विरोधी बन सकता है। कुछ लोगों ने आराधना स्थल को अपवित्र कर दिया और जला दिया। आपको मारा और पीटा जा सकता है। आपके प्रिय लोग आपसे अलग हो सकते हैं। आपको गिरफ्तार किया जा सकता है और जेल में डाल सकता है।
अगला सवाल हमारे श्रोता आशीष जी का है। आशीष जी पूछते हैं, क्या यीशु में किसी भी व्यक्ति को बचाया जा सकता है?
जी हाँ आशीष जी, यीशु पर भरोसा करके किसी भी व्यक्ति को बचाया जा सकता है। कोई अपवाद नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर दुनिया में हर एक व्यक्ति से प्यार करता है जिसमें आप और मैं शामिल हैं। वह हमसे इतना प्रेम करता है कि उसने अपने पुत्र को हमारे लिए क्रूस पर मरने के लिए दे दिया ताकि हम उद्धार पा सकें। पाप से यीशु की ओर मुड़कर एक व्यक्ति को बचाया जा सकता है।